धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् जय उदरसेन नाहो जैन महाकम्मपयणि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्यो खुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अभी हमारा द्वितीय खंड शुरू हुआ है, खुद्दा बंध, और इस सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 पर हम आगे 88। यहाँ एक एक मार्गणा में वो जीव कैसे होते हैं इसकी बात चल रही है। हमने गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद की बात देखी थी, कषाय की भी बात हो गई, योग, वेद, कषाय। अब ज्ञान की बात हो रही थी, तो ज्ञान मार्गणा के अनुसार जीवों के भेद करते हैं, तो मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, और फिर मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञानी। तो ये प्रश्न एक पूछा गया था, ये तो सात ज्ञान जो है, जो औपशमिक भाव है, तो क्यों, कैसे होते हैं जीव, तो उस पर उन्होंने वो चर्चा समाधान कर दिया था। और वो बाद में ये नक्की हुआ कि क्षौपम लब्धि से जीव मति ज्ञानी आदि होते हैं। उसके बाद अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है 88 पृष्ठ पर 40 नंबर का सूत्र, केवल नाणी नाम कदम भवदी, जीव केवल ज्ञानी किस कारण होता है, किस कारण होता है ना, ये पांच भावों में से किस कारण वो होता है। हाँ, आपका प्रश्न है, एक क्षौपम लब्धि कहा, तो जो हम प्रथमोपशम समेत के पहले में जो अंतर्मूर्त पहले होती है क्षौपम लब्धि, क्या वही है, तो कहते वो नहीं है, क्योंकि ये क्षौपमिक लब्धि जिसको कह रहे हैं वो तो एक इंद्रियों के भी पाई जाती है, और ये क्षौपम लब्धि तो थ्रू आउट लाइफ टाइम होती है, और जो सम्यक्त के पूर्व होने वाली जो क्षौपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि आदि बातें कहते हैं, तो मात्र संगी पंचेंद्रियपना वो क्षौपम लब्धि नहीं। वहां पर जिस काल में वो ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणा हीन कर हृदय में आता रहता है, यानी उसमें तो उसके साथ ज्ञानावरणादि यानी सभी लेना, यहाँ तो केवल मात्र ज्ञानावरण का क्षौपम की बात चल रही है, तो सभी जो छद्मस्तों को क्षौपमिक ही ज्ञान है, भले वो मिथ्या हो या सम्यक हो, वो क्षौपमिक ज्ञान है, जितना ज्ञान का उघाड़ है उसको क्षौपमिक लब्धि, क्षौपमिक ज्ञान कहते हैं। और वहां जो सम्यक तो के यानी प्रथमोपशम के पहले में जो क्षौपम लब्धि बताई जाती है वो बात जुदी है, वहां उसके साथ साथ विशुद्धि भी बढ़ रही है। अकेले ज्ञानावरण का क्षौपम यानी वो अनंत गुणाहीन इतना ही नहीं लेना, केवल क्षौपम हो तो निहीनाधिक भी होता रहता है, उघाड़ कम ज्यादा होता है, वहां प्रति समय अनंत गुणाहीन हो रहा है आवरण का उदय, अकेले ज्ञानावरण का नहीं, ज्ञानावरण है, दर्शन मोहनीय का भी, मिथ्यात्व का भी, प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में, यानी मिथ्यात्व भी मंद मंद हो रहा है, वैसे चारित्र मोहनीय भी हीन होकर उदय में आ रहा है, यानी उसका भी राग की मंदता, यानी जिसको हम विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में लेंगे, वहां तो सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभव हीन होकर उदय में आता है, ये वहां की चली थी। क्षौपम बात अलग है, यहाँ जो लब्धि कह रहे हैं तो जीव की कितनी जानने की योग्यता है, उसको यहाँ क्षौपमिक लब्धि कह रहे हैं। एक ही शब्द अनेक जगह अलग अलग अर्थों में आता है, क्योंकि उसी को संगी पंचेंद्रिय प्राप्त हुआ, बस वो क्षौपम लब्धि है, हमें तो क्षौपम लब्धि हम पहले से ऐसा लोग समझते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लब्धि वहां पर अंतर्मूर्त मात्र होती है, सबका मिलकर भी काल अंतर्मूर्त है, करण लब्धि सहित पांच चारों लब्धि, इससे सिद्ध होता है ना, केवल क्योंकि हम देखते हैं ना जिसका बहुत इंटेलिजेंस है, सौक्षम बहुत है, परंतु आईक्यू जिसको कहेंगे, परंतु वो तो अत्यंत अन्य संकलेश परिणाम में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसको वहां सौक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि नहीं कहेंगे। तीव्र मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, वहां उसका तीव्र संकलेश भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाली जो सौक्षम लब्धि है वो जुदी है। देखो अभी हम यहाँ प्रश्न ये पूछा है 40 नंबर में कि जीव केवल ज्ञानी किस कारण होता है, किस कारण होता है, क्या वो औपशमिक भाव से होता है कि क्षौपशमिक भाव से होता है, इसकी चर्चा चलेगी। ये प्रश्न क्यों पूछा, तो शंकाकार के मन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर, यानी इतने विकल्प है तो उसमें से कौन सा नक्की लेना, तो उसके वो विकल्पों की चर्चा है। प्रश्नकार के मन में क्या प्रश्न उठ सकते हैं और फिर स्वयं ही उसके समाधान भी देंगे। तो कहते क्या औदयिक भाव से, क्या औपशमिक भाव से, क्या क्षौपशमिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से जीव केवल ज्ञानी होता है। तो कहते पारिणामिक भाव से तो होता नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव कौन कौन से जीवों के पास है, सभी जीवों के पास है, पर सबको केवल ज्ञान नहीं है, ख्याल में। तो कहते यदि ऐसा होता तो, यानी नहीं है और क्यों नहीं उसके लिए कारण बताते, सभी जीवों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाता, औदयिक भाव से भी केवल ज्ञान नहीं होता। आचार्य स्वयं ही एक एक का निराकरण कर रहे हैं, शंकाकार को या आचार्य उनके मुंह से। तो औदयिक का अर्थ क्या होता है, कर्म के उदय से होने वाला भाव, तो केवल ज्ञान कर्म के उदय से होगा तो सिद्धों में कौन सा कर्म का उदय है, समझ में, किसी कर्म के उदय से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि केवल ज्ञान के प्रतिबंधक कर्मोदय से उसकी उत्पत्ति होने में विरोध आता है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण आदि जो अन्य जो ज्ञानावरण वहां पर है, तो उसके उदय से उनका केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, किसी भी कर्म के उदय से केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ये कहना चाहते। अब कहते केवल ज्ञान औपशमिक भी नहीं है, ये औपशमिक भाव हमने कहां देखे थे, याद है औपशमिक कौन कौन से भाव है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व में कर्मों की क्या पोजीशन है, वो तो पहले अंतर किया फिर कुछ काल के लिए उपशमित हो गए, यानी वहां उनका उदय नहीं है। औपशमिक सम्यक्त्व मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय अंतर्मूर्त के लिए नहीं है। यदि हम केवल ज्ञान को औपशमिक मानेंगे तो अंतर्मूर्त के लिए के वो सारे पांचों ज्ञानावरण का उदय उपशमित हुआ है, मिट गया, ऐसा मानेंगे तो अंतर्मूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वापस जन्मस हो जाएगा, क्योंकि उपशम भाव तो अंतर्मूर्त के लिए होता है। तो कहते केवल ज्ञान औपशमिक भी नहीं है, क्योंकि मोहनीय के समान ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता, ये औपशमिक भाव जो कहेंगे ना, उपशम में केवल मोहनीय का ही, दर्शन मोहनीय हो या चारित्र मोहनीय, दो में ही ये घटित होता है, अन्य किसी कर्मों में नहीं। अब केवल ज्ञान क्षौपशमिक भी नहीं है, पहले तो एक एक विकल्प खड़ा करके वो नहीं है उसके लिए स्वयं ही दलील दे रहे, क्योंकि असहाय, केवल ज्ञान कैसा है, असहाय ने गरीब बेचारा वो नहीं जिसको दूसरे किसी सहाय के निमित्त की अपेक्षा नहीं, उसको असहाय कहते, अनाथ भी कहते, दूसरा कोई उनको नाथ नहीं है, हम तो किसको कहते असहाय, गरीब बेचारा, हम चल नहीं सकता है, असहाय है, वो असहाय की बात नहीं है, वो स्वसहाय है, है ना, असहाय और करण क्रम एवं व्यवधान से रहित, करण यानी इंद्रिया, कोई साधन, यानी वो इंद्रियों का वहां कोई काम ही नहीं है, वहां क्रम नहीं होता है, अक्रम से यानी युगपत जानते हैं, एवं व्यवधान से रहित, उसको कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट, कुछ बाधा नहीं होती, ऐसे ज्ञान को क्षौपशमिक होने में विरोध आता है। यदि हम केवल ज्ञान को क्षौपशमिक मानेंगे तो ना उसमें कोई इंद्रिया निमित्त होती है, वो तो असहाय ज्ञान है और उसमें क्रम भी नहीं है, यानी क्षौपशमिक ज्ञान कैसा है, तो वो असहाय नहीं है, तो उसमें करण इन इंद्रियों की जो निमित्तपना बनता है वो क्रम सहित ज्ञान है और व्यवधान होता है, हिनादिकता भी होता है, अन्य कुछ चीजों से बाधा भी उसमें आती है। इसलिए क्षव केवल ज्ञान को क्षवशमिक नहीं मानते। यहाँ शंका होती है कि समस्त ज्ञान केवल ज्ञान ही है, कोई ऐसा अगर उसमें तर्क करने वाले को क्या कुछ भी तर्क हो सकते हैं? तो यहाँ कोई ऐसा कह सकता है कि ये जो समस्त ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान ही है, हमारा जो थोड़ा ज्ञान है ना वो केवल ज्ञान ही है, क्योंकि आवरण के दूर हो जाने से अज्ञानों में उसी से निकलने वाले ज्ञान कण पाए जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा आवरण छूट गया है और उसके ज्ञान कण ये उसी को हम ये क्षोभशमी ज्ञान है। वो क्षोभशमी वगैरह कुछ नहीं है, मति श्रुत वगैरह भेद नहीं है, वो केवल ज्ञान के ज्ञान कण है कुछ छूटे हुए, ऐसा कोई मान सकता है, ऐसा कोई तर्क कर सकता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, फिर से व्यवधान है ना, बाधा यानी नष्ट हो जाने। हम कहते हैं क्षोभशमी ज्ञान कैसा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कभी कुछ रोग हो जाए, अन्य कुछ हो जाए, विस्मरण भी हो सकता है, वो ज्ञान कहाँ चला गया उसका, क्योंकि वो तो हीनादिक होता है ना। क्षोभशमी ज्ञान की विशेषता क्या है, अब एक इंद्रिय में चला गया पंचेंद्रिय, तो उसका ज्ञान कहाँ चला गया? असहाय यानी उसको अन्य किसी निमित्त की वहाँ जरूरत नहीं, वो स्वसहाय है, उसको असहाय कहते हैं। हम असहाय ने गरीब बेचारे को कहते वैसा नहीं है। और क्या प्रश्न है? क्रम यानी क्षोभशमी ज्ञान क्रम से जानता है, और केवल ज्ञानी युगपत एक समय में सब कुछ जानते हैं। करण का अर्थ होता है इंद्रियों से जानते हैं, क्षोभशमी ज्ञान में इंद्रिया पड़ती है, निमित्त पड़ती है, और केवल ज्ञान में वो कोई ना इंद्रिया काम करती है ना अन्य कुछ। तो यहाँ उस पर ये प्रश्नोत्तरी यानी विकल्प चल रहे हैं यहाँ पर शंका कर। अब एक विकल्प ऐसा उसको आया तो ये तो केवल ज्ञान ही है, ऐसे कुछ अन्य भेद भी कुछ नहीं है, इसमें से वो कुछ ज्ञान कण निकल रहे बाहर, थोड़ा थोड़ा आवरण इधर उधर कम हो गया इसलिए थोड़े ज्ञान कण बाहर आ रहे हैं, तो ये केवल ज्ञान ही है। और ये ज्ञान कण केवल ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव में पांच ज्ञानों का अभाव है। ये कहते हैं वो पांच ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते जीव के, तो केवल ज्ञान ही है पूरा का पूरा केवल। ये तो एक तर्क आगे प्रस्तुत कर रहे। यदि कहा जाए कि जीव में पांच ज्ञानों का अभाव है, यह किस प्रमाण जाना जाता है, यानी कोई उसके लिए फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये तर्क कर रहे हैं। और तर्क वाले को कोई ने पूछा, क्योंकि ये तो हम मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान नहीं है, तो पांच ज्ञान होते हैं वो सारे प्रमाण ज्ञान है वगैरह वगैरह, हमने सूत्र पढ़े, पर तर्क क्या उठाया उसने, पांच होते ही नहीं, बस केवल ज्ञान ही है, उसमें वो हीनादिक प्रकट हो जाए। कोई उसके लिए पूछेगा तुम ये कैसे कह सकते हो कि पांच ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए वो स्वयं तर्क वाला क्या करेगा समाधान, के त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों का विषय करने वाला, ये जो केवल ज्ञान है ना कैसा है, समस्त द्रव्य पर्याय को विषय करने वाला, और त्रिकाल गोचर तीन काल के, भूत भविष्य वर्तमान, अक्रम भावी, इंद्रिय और आलोक आदि, आलोक यानी प्रकाश, आलोक ने आलोक आदि साधनों से निरपेक्ष, इसको करण भी कहेंगे, साधन को करण भी कहते हैं, यानी किसी साधन से निरपेक्ष है। कौन कौन से साधन हो सकते, इंद्रिया है, प्रकाश है, इसकी कोई वहाँ साधनों की वहाँ अपेक्षा ही नहीं है, उससे निरपेक्ष। और कैसा है केवल ज्ञान, सूक्ष्म है, दूरवर्ती और समीपवर्ती आदि विघ्न समूह से मुक्त, यानी केवल ज्ञान यानी हमारा ज्ञान कैसे, तो सूक्ष्म ज्ञान वो तो इंद्रियों के सामने होने चाहिए पदार्थ, और फिर उसके रेंज वाले चाहिए, अति सूक्ष्म को नहीं जान सकता है, ऐसी केवल ज्ञान में कुछ नहीं है, उस सूक्ष्म को भी जानते हैं, दूरवर्ती को भी जानते हैं, यानी कोई काल का अंतर हो या क्षेत्र का अंतर हो उसमें बाधा नहीं डालते, ये व्यवधान का हमने अर्थ देख लिया, यानी आदि अन्य चीज़ों से उसमें कुछ बाधा नहीं आती, यानी पदार्थ सूक्ष्म है इसलिए बाधा आ गई नहीं जान सकता ऐसा नहीं है, बहुत दूर है स्वर्ग नरक और उसकी बात नहीं जान सकते, ये भी बाधा नहीं है उसमें, या अभी तो नहीं है, राम पांडव वगैरह कब के हो गए, तो उनको भी जानने में बाधा नहीं है उनकी, ऐसा जो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान होता है ऐसे, केवल ज्ञान से व्याप्त, यानी जो केवल ज्ञान का पहले वर्णन कर दिया, और ऐसा जो केवल ज्ञान है उससे केवल ज्ञान से व्याप्त समस्त जीव प्रदेशों में, यानी सारे ही जीव प्रदेश केवल ज्ञान से व्याप्त होकर बैठे हैं। अब कहते हैं ऐसे जो केवल ज्ञान है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें अन्य ज्ञान नहीं हो सकते। जो हम पर्याय अपेक्षा बात कर रहे हैं ना, वो तो ये तो ऐसे कायम केवल ज्ञान ही ऐसा मान रहा है, यानी ऐसा तर्क उठा रहा है। तो कहते केवल ज्ञान से व्याप्त समस्त जीव प्रदेशों में क्रमभावी, अभी क्षोभशमी ज्ञान की बात कर रहे हैं, साधन सापेक्ष यानी इंद्रिया प्रकाश आदि की अपेक्षा रहती है, सप्रतिपक्ष क्योंकि वहाँ ज्ञान आवरण है ना, वहाँ पर उसका प्रतिपक्ष भी पाया जाता है, परिमित यानी लिमिटेड ज्ञान है, मर्यादा है उसके, और अविशद स्पष्ट नहीं है, ऐसे मति आदि ज्ञानों का अस्तित्व होने में विरोध आता है, ये उसके विकल्प चल रहे हैं। हमने प्रश्न का मिटाया था, परंतु वो प्रश्न रख के भी उसका अर्थ कर सकते हैं, यानी प्रश्न चिन्ह लगाया है तो वो रहने दो, क्योंकि ये शंकाकार के विकल्प है कि जीव प्रदेशों में केवल ज्ञान व्याप्त है और इसलिए वहाँ अन्य ज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि एक जीव के पांच ज्ञान नहीं हो सकते, बस एक केवल ज्ञान ही होता है, ऐसा उसका कहना है। उसकी दलील क्या है उसको ये शंकाकार के मत प्रस्तुत करे। और केवल ज्ञान से अवगत पदार्थों में शेष ज्ञानों की प्रवृत्ति भी नहीं होती, और केवल ज्ञान से जो पदार्थ जाने जाते हैं वहाँ अन्य ज्ञान क्यों प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि विशद और अविशद ज्ञानों की एक आत्मा में एक काल में प्रवृत्ति होने में विरोध आता है, यानी स्पष्ट भी जान रहा है और अस्पष्ट भी जान रहा है, ऐसे एक साथ में क्यों हो सकता है। जैसे हम केवल ज्ञान के साथ पर्याय में केवल ज्ञान है तब अन्य ज्ञान नहीं है, इसके लिए यही दलील देते हैं। ये दलील वो तो जीव में केवल ज्ञान ही होता है और वो केवल ज्ञान के ही प्रकट ज्ञान करें ऐसा कह रहा है, उसके लिए यही दलील जो सही दलील है वो उसके अपने विकल्प के लिए दे रहा है। यानी विशद और अविशद एक साथ नहीं हो सकते, और जाने हुए पदार्थ को पुनः जानने में कोई फल भी नहीं है, यानी केवल ज्ञान से जान लिया फिर अन्य ज्ञान से क्यों जानेगा, क्योंकि उसका यही कहना है कि केवल ज्ञान ही आत्मा में, अन्य ज्ञान होते ही नहीं, और ये जो कुछ ज्ञान कर्ण है वो केवल ज्ञान ही है, थोड़े अंश में जान रहे हैं, फिर जाने हुए को फिर दोबारा क्यों जानेगा, ये उसका दलील उसकी ये चल रही है। तो कहते वो केवल ज्ञान में न जाने हुए पदार्थों में मति आदि ज्ञानों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते, ये स्वयं के विचार है। पहले कहते केवल ज्ञान से जाने उसे मति ज्ञान वगैरह क्यों प्रवृत्ति करेगा, फिर कहते ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि केवल ज्ञान से 90 पेज पर है 90, केवल ज्ञान से न जाना गया हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है, यानी केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आता है, इसलिए जीव में पांच ज्ञान नहीं होते, एकमात्र केवल ज्ञान ही होता है, ये भी प्रश्न चिन्ह रखो, क्योंकि अभी शंकाकार के ही विकल्प चल रहे हैं, हमने लास्ट टाइम निकाला था प्रश्न चिन्ह को। अब कहते और यानी प्रश्न क्यों पूछा गया कि कौन से भाव से होते हैं, उसके क्या उसमें मन में कौन कौन से संशय हो सकते हैं, ये शंकाकार के विकल्पों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें से तो कुछ बातें तो सही है और कुछ तो उसमें गड़बड़ी चल रही है ना, गड़बड़ी है तभी तो उसने प्रश्न पूछा है कि किस भाव से उत्पन्न होता है। और आवरण ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, आवरण तो प्रतिपक्षी है, वो ज्ञान को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जो विनाशक है उन्हें उत्पादक मानने में विरोध आता है, यानी शंकाकार के विकल्प चले तो केवल ज्ञान के आवरण से तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए केवल ज्ञान क्षौक्षमिक भाव को ही प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं है, यानी वो तो उसने क्या रेफरेंस प्राप्त किया, वही क्षौक्षमिक भाव को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान ही उसका ही कुछ अंश है, उसी को क्षौक्षमिक कह रहे इसलिए उसको क्षौक्षमिक कहो। तो कहते ऐसा भी नहीं है क्योंकि क्षौक्षमिक भाव साधन सापेक्ष होता है, अतः उसके केवल रूप होने में विरोध आता है, केवल यानी वो किसी साधन बीना वाला। क्षार यानी भस्म से ढकी हुई अग्नि, जब वे कोयले जलाते तो उसके ऊपर राख जम जाती ना, तो उससे ढकी हुई अग्नि, तो क्षार से ढकी हुई अग्नि से निकले हुए बाष्प को अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न उसमें अग्नि की बुद्धि उत्पन्न होती है। बाष्प ने वो वाह उसको तो अग्नि नहीं कह सकते, और न उसमें अग्नि का व्यवहार ही होता है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। अतएव ये सब मति आदि ज्ञान केवल ज्ञान नहीं हो सकते। पहले उसी ने कहा कि ये सब वही उसी के ज्ञान कण है, अब कहते ये तो केवल ज्ञान नहीं हो सकते। इस कारण से केवल ज्ञान क्षयोपशमी भी नहीं है। एक बार कहते केवल ज्ञान क्षयोपशमी है ऐसा ऐसा कारण, फिर कहते वो क्षयोपशमी नहीं है, यानी ये उसको विकल्पों के झूले में चल रहा है संशय ज्ञान उसका। अब कहते केवल ज्ञान क्षायिक भी नहीं है, ये शंका करके विकल्प है, क्योंकि क्षय तो अभाव को कहते हैं, क्योंकि अभाव को कारण होने में विरोध आता है, यानी अभाव रूप कारण नहीं हो सकता, फिर ये उसका कहना है, यानी उसके ये अनेक जुदे जुदे विकल्प है। इसलिए प्रश्न क्या पूछा कि केवल ज्ञानी किस कारण होता है, ये उसका प्रश्न है। अब उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि ये जो पढ़े ना उसमें से तो कुछ उसे शंका करके विकल्प है, उसको कोई धौला निकाल के देखो यहाँ ऐसा लिखा है ना कहकर वो तो उसकी भूल हो जाएगी। कहाँ क्या लिखा है, किस प्रकरण में, वो शंका करके बात है कि आचार्य कह रहे हैं समाधान है, उसको भी समझना आवश्यक है। ऐसे पुस्तक निकाल दिया, देखो इस पेज पर ऐसा लिखा है ना, अरे वो कौन कह रहा है, ये तो उसके मन के संशय चल रहे, विकल्प चल रहे, उसमें से दो बातों में वो उलझ रहा है ना, एक सही बात और एक कुछ गलत बात, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है। तो ये सब देखो इधर ऐसा लिखा है, ये उसको एक सही मत करके प्रस्तुत नहीं करना है। अब उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं, खैयाए लब्धि है, क्षायिक लब्धि से जीव केवल ज्ञानी होता है। लब्धि ने उसको प्राप्ति हुई ना, कर्म का क्षय तो कर्म में रह गया, जीव में यहाँ कौन से भाव की उत्पत्ति हुई, उस परिणाम को क्षायिक लब्धि कह रहे हैं। अब उसके में उसके बारे में क्या शंका उठ सकती है, उसका निषेध स्वयं कर रहे आचार्य। देखो केवल ज्ञानावरण का क्षय तुच्छ अर्थात अभाव मात्र है, इसलिए वह कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, वो ज्ञानावरण का क्षय हुआ तो क्या हुआ, वो कुछ कार्य नहीं करेगा, वो अभावात्मक है, ऐसा मत समझो ये कह रहे हैं। क्योंकि केवल ज्ञानावरण के बंध सत्व हृदय के अभाव के साथ, ये रूप शब्द क्यों पड़ा पता नहीं, वो रूप निकाल भी दे दो फिर पढ़ेंगे हम। अनंत वीर्य वैराग्य सम्यक्त्व व दर्शन आदि गुणों से युक्त जीव द्रव्य को तुच्छ मानने में विरोध आता है। क्या कहते हैं, जब केवल ज्ञानावरण का बंध भी नहीं रहा, उसका सत्व भी खलास हो गया, उदय का भी सवाल नहीं है, यानी परिपूर्ण नष्ट हुआ, तो क्या अकेले ज्ञानावरण ही गया है, तो कहते उसके साथ साथ दर्शनावरण भी पूरा चला गया, अंतराय भी पूरा चला गया है ना, तो वह अनंत वीर्य प्रकट है, प्रकटा है, वैराग्य है यानी पूर्ण वितरागता हुई है उसकी, सम्यक्त्व है दर्शन तो ले ही लिया हमने, ऐसे गुणों से युक्त जीव द्रव्य को तुच्छ मानने में विरोध आता है। ख्याल में आई ना बात, यानी वो केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ है, इसलिए जीव में जो भाव उत्पन्न हुआ है वो तो कुछ मामूली भाव नहीं है, वहां तो इतने सारे गुणों के प्रकट हो गए। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, भाव का अभाव रूप होना विरोध को प्राप्त नहीं होता। अभी भाव अभाव की चर्चा चल रही, शाम को भी वो लघु तत्व स्पोर्ट में वही चल रहा है, रविवार को भी यही विषय चल रहा है, अभाव भाव 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 अभाव अभाव भाव। तो कहते कि भाव और अभाव स्वभाव से ही एक दूसरे को सर्वात्म रूप से आलिंगन करके स्थित पाए जाते। क्या कहते हैं, भाव और अभाव ये दो विरोधी धर्म है, परंतु एक साथ एक ही जीव में युगपत, एक जीव में क्या प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। यहाँ तो हम जीव की बात कर रहे हैं, भाव रूप और अभाव रूप। तो ये भाव में तो अनेक अलग अलग अर्थ में भाव को भी ले लिया जाता है। अब पर्याय की भी बात करेंगे। अब वर्तमान में जो भाव रूप है वो अनंतर समय में अभाव रूप हो जाती पर्याय, और जो अभी अभाव रूप है वो नेक समय में भाव रूप हो जाती है। इसको भाव अभाव और अभाव भाव ये दोनों शक्तियां बताई जाती है। कभी कभी त्रिकाली को भी भाव कहते हैं और पर्याय होने वाली उसके भी वो अभाव में गिनते, यानी अन्य अलग अलग उसके जो पॉइंट्स है। तो भाव और अभाव ये शक्तियां हैं जी, और वो एक साथ पाई जाती है, यही यहाँ बता रहे। भाव का अभाव रूप होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, यानी जो उत्पाद रूप अभी पर्याय है वो व्यय रूप होना वो तो कोई विरोध नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण का भाव था, सद्भाव था, उसका अभाव यानी उसका उदय मिट गया, और यहाँ जीव का जो कुछ क्षोभशमिक भाव था वो अभिक्षायिक भाव हो गया। क्षोभशम रूप ज्ञान था कि नहीं पहले छद्मस्थ अवस्था में, उसका भाव रूप था, अब वो अभाव रूप होकर स्वयं केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया है, वो जीव की अपनी लब्धि है। और भाव और अभाव स्वभाव से ही एक दूसरे को सर्वात्म रूप से आलिंगन करके स्थित पाए जाते हैं, उपलब्ध है पाए जाते हैं। ऊपर लिखा ना उलंबा दो, ऊपर की पहली लाइन में पहला शब्द, यानी वो वही इकट्ठा ही पाए जाते हैं। जो बात पाई है यानी पाई जाती है उसमें विरोध नहीं होता, यानी जो एक्चुअली वहां उपलब्ध बातें हैं तो उसमें विरोध काहे का, क्योंकि विरोध का विषय अनुपलब्धि है। एक कोई पाया नहीं जाना ये विरोध का लक्षण है, वो एक साथ नहीं हो सकते। अगर हमने कभी देखा ही नहीं एक साथ तो कहते हैं हम विरोध है, परंतु भाव और अभाव दोनों एक साथ देखने में आते हैं। ऐसे भी अगर भाव और अभाव को उत्पाद और व्यय रूप में भी लेते ना, एक ही समय में उत्पाद भी और व्यय भी है, व्यय पूर्व पर्याय का और नवीन पर्याय का उत्पाद, तो कहेंगे भाव और अभाव एक साथ विद्यमान है। ये अपनी अभी शाम को यही चर्चा चल रही है, बहुत विस्तार से चल रही है। तो जो बात पाई है ना पाई जाती है, ऊपर तो लिखा ना उलंभ माने नच उलंभ माने विरोह, यानी जो उपलब्ध होती है यानी जो पाई जाती है बातें उसमें विरोध नहीं होता, और विरोध का विषय क्या है अनुपलब्धि। जो पाई ही नहीं जाए उसको कहेंगे वो विरोध वहां हो सकता है। इसलिए जहां जिस बात की उपलब्धि होती है उसमें फिर विरोध का अस्तित्व मानने में ही विरोध आता है। ये थोड़ी न्याय की भाषा है, इसमें अटपटी लगती है परंतु सही सरल है। भाव और अभाव एक साथ हो सकते हैं, ये कहना है उनको। अब ये ज्ञान मार्गणा की चर्चा यहाँ पर हो गई। पर्याय ज्ञान को केवल ज्ञान नहीं कहते, कहाँ लिखा पर्याय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते? हाँ देखो आपका प्रश्न ऐसा है, पर्याय ज्ञान को आवरण नहीं, उसका अर्थ समझते हैं तो इसलिए वो निरावरण ज्ञान है, तो केवल ज्ञान भी निरावरण ज्ञान है, इसलिए पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान है क्या ऐसा है तो कहते हैं ऐसा नहीं। उसका अर्थ पहले समझ लो। पर्याय ज्ञान का अर्थ क्या होता है मालूम है? सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त का जो मिनिमम पॉसिबल ज्ञान है, जो जघन्य में जघन्य ज्ञान की जो पर्याय प्रकट है उस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। उसमें थोड़ा अधिक ज्ञान किसी को है उसका नाम है पर्याय समास, उससे अधिक उससे अधिक उससे अधिक, वो अक्षर ज्ञान तक के जो भेद है वो सारे पर्याय समास वाले हैं, एक इंद्रिय में सब पाए जाते हैं। तो कहते ये जो पर्याय समास नाम का ज्ञान है वो तो मिनिमम पॉसिबल ज्ञान का उघाड़ है, उससे रहित कोई जीव हो जाएगा कभी नहीं होगा। तो क्या उसको आवरण करने वाला ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए ज्ञानावरण, उसको आवरण करने वाला कर्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितने ज्ञेय है उतने कर्म है। पर्याय ज्ञान इतना इतना जानता है मान लेते हैं, उसका विषय इतना, क्योंकि पर्याय ज्ञान उस स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कुछ ज्ञान का उघाड़ है। अब उस ज्ञान का उघाड़ है तो उसका आवरण कर्म करने वाला कर्म भी सत्ता में है, बंधता भी है, परंतु जिसको इतना ज्ञान का उघाड़ है उसका आवरण का उदय नहीं होगा। जो सर्वघाती देशघाती में करते हैं ना, अभी वो पर्याय ज्ञान पर घटित करना, यानी पर्याय ज्ञान ये एक ज्ञान का पहला भेद है। दूसरा भेद है पर्याय समास का पहला भेद, जिसको हम नंबर एक कहेंगे पर्याय ज्ञान, और नंबर दो उसके थोड़ा अधिक वाला ज्ञान। तो जब बंध हुआ तो एक नंबर का ज्ञानावरण, दो नंबर का ज्ञानावरण, सभी ज्ञानावरण का बंध हुआ था। अब जो सूक्ष्म निबोध लब्धि अपर्याप्त जीव है, उसके क्या पोजीशन है? एक नंबर का ज्ञानावरण है, उसका उदय नहीं है, परंतु उसके दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, आगे के सभी ज्ञानावरण का उदय है। यानी उसके लिए वो पर्याय ज्ञान इतना तो मिनिमम खुला रहेगा ही रहेगा, उसके आवरण का उदय कभी नहीं होगा, इसलिए उसको निरावरण कहा। पर पर्याय ज्ञानावरण नाम का कर्म है, सत्ता में है, जब उदय में आने वाला है वो आगे वाले में रूप होकर उदय में आएगा। ने एक नंबर का ज्ञानावरण दो नंबर के ज्ञानावरण रूप होकर उदय में आएगा, जो हम सर्वघाती देशघाती में घटित करते वैसे यहाँ समझना। तो पर्याय ज्ञानावरण का कभी उदय नहीं पाया जाएगा किसी भी जीव में, इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान भी कैसा है, तो उसमें कोई भी ज्ञानावरण नहीं, कोई भी ज्ञानावरण नहीं, उसको भी निरावरण कहते हैं। परंतु इसलिए पर्याय ज्ञान को केवल ज्ञान मत कहो, निरावरण ज्ञान कहना अलग बात है, और उसको केवल ज्ञान के वो क्षौक्षमिक है, और केवल ज्ञान जो निरावरण है पूरे ज्ञानावरण का नाश होकर वो क्षायिक है। बहुत महान अंतर है दोनों में। ऐसा पूछना प्रश्न, कुछ मन में विकल्प नहीं रखना। हाँ, नहीं तो उल्टा लॉजिक हो जाएगा ना। हाँ, ये उसके नहीं, इतना सब जिसको क्षोभम की परिभाषा पता है ना, उसको ये घटित करके बता सकते। हाँ,
मैं ये कहना चाहता था, जैसे हमने रात को फैलोसिकल लॉजिक बताया था।
हाँ, फैलोसिकल आपने बताया था,
गधे को बताया था
उन्होंने, ये बताया था।
हाँ।
गधे को चार पैर होते हैं और आदमी को दो होते हैं, इसलिए आदमी आधा गधा है, ये तर्क कर दिया। इसको क्या कहेंगे? कुतर्क। उन्होंने कहा फैलोसिकल लॉजिक। वैसे यहाँ जो है कि पर्याय ज्ञान भी निरावरण है, केवल ज्ञान भी निरावरण है, इसलिए पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान है ऐसा मानना, ये तो उससे भी ज्यादा फैलसी है ना। पर्याय ज्ञान मिनिमम ज्ञान है, और उसका अगर आवरण का उदय हो जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, इसलिए उसका उदय कभी नहीं होगा। पर बनता है, वो बंद होगा उसके सारे, उसके उदय नहीं है। अब हमारे आपके वो सारे कर्म जो पर्याय ज्ञान आवरण से लेकर सभी है, हमारे उसका उदय नहीं, हमारे तो बहुत आगे तक के उदय नहीं है। भले देशघाती, यानी वो देशघाती का उदय है, तो उसमें भी देशघाती में इतने सारे भेद है। जैसे हमें कितने अक्षर संबंधी ज्ञान है, मान लेते ना कि 10 लाख शब्दों संबंधी अक्षर संबंधी ज्ञान है, उसके आगे सारे श्रुत ज्ञान के भेद जो है 12 अंगों के, उस संबंधी आवरण का उदय है, और जितना जो हम जानते हैं उस संबंधी आवरण का उदय नहीं है, ये क्षोभम है। ख्याल में आए ना? मान लेते ना हमारा 10 लाख होना, ज्ञान को हमने पर्याय ज्ञान से 1, 2, 3, 4 नंबर देते देते हम 10 लाख तक आ गए, तो 10 लाख तक के आवरणों का हमारा उदय नहीं है, पर उसे उसके आगे सभी भेदों पर हमारे आवरण है, उसका उदय है। जैसे हमने एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कैसे घटित किया, उन्होंने स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी आवरण का देशघाती का उदय है, और बाकी सभी का सर्वघाती का उदय। जो एकेंद्रिय जीव है उसके रसने इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी आदि सभी इंद्रिय संबंधी जो आवरण है उसके सर्वघाती का उदय है। और जब हम केवल मति ज्ञान पर घटित करते हैं, तो हम कहते हैं ना मति ज्ञान आवरण का सर्वघाती का सदवस्था रूप क्षय, उसके उदय में नहीं आना, उदयाभावी क्षय जिसको कहेंगे, और देशघाती का उदय होता है। वो इन जनरल मति ज्ञान की परिभाषा है। मति ज्ञान में भी एक एक इंद्रिय वालों को, उसका मति ज्ञान कितनी इंद्रियों से जानता है उसका उन्होंने अलग अलग परिभाषा बनाई। ऐसे हर ज्ञान में समझना। अब यहाँ चल रही बात संयम मार्गना की चलेगी। 91 पृष्ठ पर 48 नंबर का सूत्र संयमानुवादेना। देखो अभी संयम मार्गणा है तो संयम की अपेक्षा से ये जीवों के भेद करेंगे। तो कौन कौन से भेद हो गए संयम मार्गणा के भेद मालूम है? एक बाजू तो संयमी हो गए और दूसरे बाजू असंयमी और कोई संयमासंयमी, मुख्य तीन भेद हो गए। और संयमी कौन है? पहले से चौथे गुणस्थान तक, संयमासंयमी पांचवें गुणस्थान वाले, और संयमी छठे से चौदहवें तक। फिर संयमियों में भी संयम के भेद बताएंगे। एक है सामायिक और छेदोपस्थापना, छठे से नौवें गुणस्थान तक। परिहार विशुद्धि छठे सातवें वाले के होते, उससे स्पेशल उसका सार वर्णन है। फिर सूक्ष्म सांप्राय दसवें गुणस्थान में होता है और यथाख्यात। तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम, ये इतने भेद है। अभी उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। तो यहाँ पूछते हैं संयमानुवादेन संजदो सामाय छेदोवट्ठावन शुद्धि संजमो नाम कदम भवति। कहते संयम मार्गणानुसार जीव संयत तथा सामायिक छेदोपस्थान शुद्धि संयत किस कारण से होता है? संयत कहने से सामान्य से संयत कह दिया, तो सामान्य से छठे से चौदहवें तक जहाँ लागू होता है वो सारे संयत कहलाएंगे। उसमें स्पेसिफिक बता रहे सामायिक और छेदोपस्थापना। गुणस्थान अभी हमने कौन से देखे थे? हाँ, छः से नौ। तो छः से नौ कैसे होते हैं, तो उसमें कौन कौन से भाव होते हैं? क्या क्षौपषमिक भाव है, तो क्षायिक भाव है कि औपषमिक भाव है, आदि चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये हमने हिंदी पढ़ा ना उसका, उसके नीचे नाम संयम, स्थापना संयम, द्रव्य संयम और भाव संयम। इस प्रकार संयम चार प्रकार का है, उसमें निक्षेप लगाए। नाम और स्थापना संयम ज्ञात है। किसी का संयम नाम रख सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे आजकल तो ये तो सम्यक तो संयम आदि नाम बहुत हो गए हैं। स्थापना संयम तो किसी में स्थापना कर देना संयम की, वो स्थापना संयम हो गया। द्रव्य संयम, हमने द्रव्य निक्षेप के भेद देखे थे, आगम और नुआगम। आगम में द्रव्य संयम संबंध यानी संयम संबंधी आगम का ज्ञाता वो जीव को और उसमें उपयोग नहीं है, उसको हम कहेंगे आगम द्रव्य संयम, उस जीव को कहेंगे। तो आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। नो आगम में हम फिर तीन भेद करेंगे, ज्ञायक शरीर, भाव्य यानी वो जीव जो भविष्य में जानेगा, और तद व्यतिरिक्त में कर्म और नो कर्म के भेद करेंगे। तो आगम द्रव्य संयम ज्ञात है, ज्ञात है ने हमने बहुत बार पढ़ा था। आगम द्रव्य में किसको लेना? उस विषय संबंधी आगम का ज्ञाता उसमें उपयोग नहीं है, वो आगम द्रव्य संयम। नो आगम द्रव्य संयम के तीन भेद है, ज्ञायक शरीर यानी वो जानने वाले जीव का शरीर कुछ नहीं जान रहा है, इसको नो आगम कहेंगे। वो शरीर भूतकाल का यानी जो छोड़कर आया पूर्व भव में हो सकता है, वर्तमान का या हो सकता है नेक्स्ट भव का धारण करेगा वो। तो ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य संयम, ये पूरा एक नाम है। भव्य नो आगम द्रव्य संयम यानी यहाँ भव्य में जीव को लेना, को जीव जो अभी नहीं जान रहा है परंतु भविष्य में जानेगा, इसलिए भव्य नो आगम द्रव्य संयम। और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य संयम, तद व्यतिरिक्त में कर्म नो कर्म को लेना है। ज्ञायक शरीर और भव्य ज्ञात है। आगे का वो एक वाक्य निकाल दो जो रिपीटेड और दो वाक्यों का संग मिक्सचर हुआ है। अभी जो जिस पर पेंसिल से लाइन देना है वो तद व्यतिरिक्त, आगे का वाक्य पढ़ी में नो आगम द्रव्य संयम और ज्ञायक शरीर और भव्य ज्ञात है, इतनी बात रिपीट है उसको निकाल दो। उसमें भी ऐसा ही है क्या? हाँ। फिर अभी आगे लिखा है, आगे की बात रखना है, एक वाक्य है वो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य संयम, संयम के साधनभूत पिच्छिका, आहार, कमंडलू, पुस्तक आदि को कहते हैं। नुआगम में वो शरीर भी नहीं है और उसका वो जीव भी नहीं है, उसको नुआगम में ले लेते हैं। तो नुआगम द्रव्य संयम में उसके संयम के साधनभूत ऐसे उसको ले लेना वहाँ पर। अब भाव संयम, भाव संयम में निक्षेप ये चल रहे हैं, ये हम द्रव्य संयम भाव संयम जीव पर वो शरीर की क्रिया वो बात यहाँ नहीं लेना है। भाव संयम आगम और नुआगम के भेद से दो प्रकार का है। आगम भाव संयम ज्ञात है, आगम भाव संयम किसको कहना है, जानने वाला जीव उसमें उपयोग वाला है। नुआगम भाव संयम तीन प्रकार का है, क्षायिक क्षौपशमिक और औपशमिक, यानी उस भाव से परिणत जीव लेना है। तो उसमें कौन से भाव हो सकते हैं जीव का, क्षायिक भाव भी हो सकता है, औपशमिक भाव भी हो सकता है, क्षौपशमिक भाव भी हो सकता है। कौन से गुणस्थान की बात है वो ऐसे उसकी बात होगी, छठे सातवें में वहाँ ये जो संयम है उसको क्षौपशमिक कहेंगे। उपशम श्रेणी वाले के संयम को क्योंकि नौवे तक लेना है उसको औपशमिक संयम कहेंगे या चारित्र नाम देते हैं, और क्षपक श्रेणी वाले नौवे तक क्योंकि सामयिक छेदोपस्थापना की बात पूछी ना तो उसको वहाँ क्षायिक नाम देंगे। अब इसकी चर्चा करेंगे। इन संयमों के प्रकारों में से किस प्रकार से संयम होता है यह प्रश्न किया गया है, समझ में। प्रश्न में उसके प्रश्न में इतने सब उत्तर आ सकते हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भाव में से निक्षेप की अपेक्षा भी संयम कह सकते हैं आप, या ये पांच भावों में से कौन सा भाव है वो भी हो सकता है, उसको यहाँ वो नुआगम भाव संयम में ले गया है तो इसमें से कौन सा वाला संयम समझना, ये प्रश्न है। इसी प्रकार यानी वो संयम संयम के लिए भी ऐसा प्रश्न पूछना और सामयिक चेतोपस्थापना के लिए भी यही प्रश्न पूछना है। इसी प्रकार सामयिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों का भी निक्षेप करना चाहिए। पहले सामान्य से संयम पर बताया, वही बात सामयिक छेदोपस्थापना के लिए लागू होती है। अब उसका उत्तर बताएंगे क्योंकि प्रश्न इतने हैं ना, इतने विकल्प, इतने जुदे जुदे नयों से निक्षेपों से उसका कथन होता है, उसमें से कैसे समझना है ये प्रश्न है। उसका उत्तर अभी 92 पृष्ठ पर है। व समियाए खैयाए खवो समियाए लब्धिये, औपशमिक क्षायिक और क्षौपशमिक लब्धि से जीव संयत व सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयत होता है। ये जीव के भाव उत्पन्न होना उसको लब्धि कहा है, यहाँ पर उसको कहेंगे संयम लब्धि प्राप्त हुई। पहले संयम का कथन करते हैं, संयम का कथन करते हैं तो वहां पर वो सामयिक या छेदोपस्थापना ऐसा भेद नहीं लेते हुए संयम का कथन कर रहे हैं। चारित्रावरण कर्म के, इसको आवरण भी नाम दे दिया जाता है, चारित्रावरण कर्म। चारित्रावरण कर्म के सर्वोपशम से, ये सर्वोपशम शब्द आया, पहले एक सत्वोपशम में शब्द आया था वो बात अलग, सर्वोपशम है उसका सब प्रकार से उपशम हुआ है। सब प्रकार का अर्थ क्या होता है, उसका भी अपकर्षण भी नहीं, उत्कर्षण भी नहीं, उसका संक्रमण भी नहीं, उदय भी नहीं, उदीर्णा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, उसको सर्वोपशम कहते हैं। सर्वोपन शब्द दर्शन मोहिनी में नहीं लागू होता क्योंकि जब दर्शन मोहिनी का उपशम होता है तब उसमें संक्रमण चलता है, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण चलता है, इसलिए उसको सर्वोपशम नाम नहीं देते, इसको देते हैं। चारित्र मुनि का जब उपशम होता है तो उसमें कोई भी कुछ भी प्रक्रिया नहीं है वहां पर। तो कहते हैं चारित्रावरण कर्म के सर्वोपशम से उपशांत कषाय गुणस्थान में संयम होता है। ये पूरा ही उपशम यहाँ घटित किया, कोई भी वहां उदय रूप नहीं है, इसलिए औपशमिक लब्धि से संयम की उत्पत्ति कही, यानी पूरा उपशम जहां है उसको वहां औपशमिक लब्धि से संयम हुआ ऐसा कहेंगे। अब शंका कहते हैं संयत के क्षायिक लब्धि कैसे होती है, तो क्षायिक लब्धि कब कहेंगे, कौन से जीव को कहेंगे, तो उसका उत्तर, चूंकि चारित्रावरण कर्म के क्षय से भी संयम की उत्पत्ति होती है, इससे क्षायिक लब्धि द्वारा जीव संयत होता है, यानी वो 12वें गुणस्थान में वो भी प्राप्त होते हैं उसके, क्योंकि चारित्रावरण का पूर्ण क्षय पाया जाता है वहां पर। जिसको चारित्र मोहनी कहते ना, उसी को यह नाम चारित्रावरण कर्म भी है। देखो एक अलग नाम आया तो उसमें कुछ घबराना नहीं। यहाँ तो कषाय वेदनी और नो कषाय वेदनी भी उसको कहते हैं, तो वो कुछ वेदनीय का भेद नहीं है। ऐसे हमको फोन आते, किसी विद्वान का फोन आया था कि समय सार में वो कषाय वेदनीय शब्द आया है, ऐसा कैसा है। तो उसको मोहनी को ही कषाय वेदनीय नो कषाय वेदनीय कह की पद्धत है चारित्र मोहनी के। वो नाम मालूम नहीं ना तो घोटाला होते है। तो यहाँ आवरण शब्द आया है। अब पूछते है नया प्रश्न, संयत के क्षौपशमिक लब्धि कैसे होती है, यानी क्षौपशमिक लब्धि में संयम कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ के जीव की बात चल रही है यहाँ पर। पहले तो औपशमिक संयम के लिए उन्होंने औपशमिक संयम लब्धि उन्होंने 11वें गुणस्थान में बताए, क्षायिक को 12वें और आगे के गुणस्थानों में बताएंगे। अभी क्षौपशमिक लब्धि कैसे होती है पूछ रहे हैं, उसका समाधान। चारों संज्वलन कषायों और नौ नौ कषायों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये कैसा उदय चल रहा है यहाँ संज्वलन का, देशघाती का उदय चल रहा है। मात्र संज्वलन का नहीं, नौ कषाय भी जहाँ उदय रूप जो है, क्योंकि नौ कषायों का उदय कहाँ तक पाया जाता है अश्विन भाई? नौवे तक तो वेद का उसे, और बाकी हास्यादि छह का वो आठवें तक है। तो इसलिए उनके देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है, इसलिए संयत के क्षौपशमिक लब्धि पाई जाती है। देखो अभी मैं बताने वाली थी पर यहाँ शंका ही पूछी है, शंका पढ़ते तो आपको ख्याल आएगा। देखो चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के स्पर्धकों के उदय को क्षौपशम नाम क्यों दिया गया है, कौन से देशघाती स्पर्धकों के उदय को? ऊपर क्या लिखा है? कदम ए देशी उदय से खो समो, ये देशघाती शब्द डालना अच्छा है यहाँ पर। शंकाकार ने पूछा ना, यानी इनके स्पर्धकों के उदय से, कौन से देशघाती? क्योंकि अभी तक हमने ये प्रश्न क्यों पूछा, अभी तक तो हमने जो क्षोभशम की परिभाषा देखी थी वहां क्या बोलते थे, सर्वघाती का उदय क्षय है और वो सत्वोपशम है या अनुदय उपशम है और देशघाती का उदय है। तो यहाँ कहते ऐसा नहीं कहते हुए अकेले देशघाती का उदय क्यों कहा, प्रश्न ये है। प्रश्न ख्याल में आए तो उसके पीछे का रहस्य समझेंगे। हमेशा क्या कहते, सर्वघाती का उदय क्षय और देशघाती का उदय, तो यहाँ तो केवल क्या कह दिया, देशघाती का उदय, तो उसको ही डायरेक्ट क्षौपशम नाम क्यों दिया, उसका उत्तर समाधान। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे हीन होकर और देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीन पना ही क्षय कहलाता है और उनका देशघाती स्पर्धकों के रूप से अवस्थान होना उपशम है। ख्याल में है ना बात? उनके अनंत गुणाहीन हो गए, वो सर्वघाती रूप नहीं रहे और देशघाती रूप से उदय में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये देशघातीकरण की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ कुछ अलग बात होती है। हाँ, उन्हीं क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षोपशम कहलाता है। उसी क्षोपशम से उत्पन्न संयम भी इसी कारण क्षोपशमिक होता है। इसी प्रकार सामायिक और चेदोपसक्ता शुद्धि संयुतों के विषय में भी कहना चाहिए। देखो यहाँ ये बात भी हो रही है कि देशघाती का उदय इतना ही कह दिया तो उसमें तो वो सर्वघाती अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है, अनंत गुणाहीन होकर देशघाती रूप से उदय आ रहे। इसलिए मात्र देशघाती का उदय कहने से वो भी बात घटित होती है, क्योंकि जो संयमी है उनके तो देशघाती का ही उदय होता है, सर्वघाती तो पड़े रहते सत्ता में। वो तो देशघातीकरण वाली जो बात है ना, तो ऊपर की गुणस्थान पांचवें गुणस्थान से ही शुरू हो जाता है देशघातीकरण मोहनीय का, और अन्य कर्मों में ऊपर देशघातीकरण नाम का एक स्पेशल जुदा वहाँ पर प्रोसेस होता है अंतरकरण के बाद, हाँ नवे गुणस्थान में, परंतु वहाँ तो वह अन्य ज्ञानावरण आदि में भी घटित होता है। यानी जब तक जीव के संयम चल रहा है तब तक वो सर्वघाती रूप से उदय नहीं है, वो देशघाती रूप से उदय है। किसका? संज्वलन का। परंतु वही जीव नीचे के गुणस्थान में आएगा तो वो तो सर्वघाती का वहां उदय चालू हो जाएगा। शंका। सामायिक और छेदोपस्थापन शुद्धि संयतों के क्षोभशम लब्धि भले ही हो, क्या कहना चाहते हैं? देखो अभी यहाँ अभी जो हमने सूत्र पढ़ा ना 49 में, औपशमिक क्षयिक और क्षोभशमिक लब्धि से जीव संयत व सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयत होता है। तो सामान्य से संयतों पर तो तीनों घटित होते हैं, कोई औपशमिक संयत है, कोई यानी औपशमिक लब्धि है, किसी के क्षयिक है और किसी को क्षोभशमिक है। शंकाकार अब कहता है कि सामायिक और छेदोपस्थापन शुद्धि संयतों के क्षोभशम लब्धि भले ही हो, क्योंकि वो तो होती ही है, परंतु उनके औपशमिक और क्षयिक लब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि औपशमिक हमने कहाँ पर घटित किया था? 11वें में, और क्षयिक 12वें और उसके आगे, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से ऊपर इन संयतों का अभाव पाया जाता है, ये उनका प्रश्न है। और नीचे के अर्थात अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो क्षपक और उपशामक गुणस्थानों में चारित्रमोह की क्षपणा व उपशामना होती नहीं है, जिससे उक्त संयतों के क्षायिक और औपशमिक लब्धि संभव हो सकते। प्रश्न ख्याल में आया? अभी 11वें गुणस्थान में जाकर पूरा उपशम हुआ है, 9वें गुणस्थान में तो उपशम पूरा नहीं हुआ है, तो उसको औपशमिक क्यों कहते हैं? वैसे ही 8वें और 9वें गुणस्थान वाले क्षपक श्रेणी वाले के क्षपणा पूरी नहीं हुई है तो उसको क्षायिक चारित्र यानी क्षायिक संयम क्यों कह रहे हैं? ये इनका प्रश्न है। सामायिक छेदोपस्थापना में तीनों भाव घटित किए 49 नंबर के सूत्र में 92वें पेज पर पहली लाइन में, यानी संयतों में भी तीन भाव घटित किए और सामायिक छेदोपस्थापना में भी तीन भाव घटित किए। इसलिए ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यहाँ क्षौपशमिक भाव भले आप कहो पर औपशमिक और क्षायिक भाव क्यों कहते हैं, उसका भी समाधान। नहीं, क्योंकि क्षपक और उपशामक संबंधी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भी, यानी क्षपक श्रेणी वाला जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है और उपशम श्रेणी वाला जो है उसमें भी संज्वलन लोभ संज्वलन के अतिरिक्त अशेष चारित्र मोहनीय का क्षपण व उपशमन के देखे जाने से, अभी अनिवृत्तिकरण की बात पहले बता रहे, 9वें गुणस्थान में तो उपशमना या क्षपणा चालू हो जाती है, तो 9वें गुणस्थान के अंत तक क्या रह गया मोहनीय का? तो लोभ रह गया, बाकी सब उपशमित या क्षय जो यथायोग्य हो जाता है। अशेष चारित्र मोहनीय का, लोभ संज्वलन को छोड़कर बाकी सभी चारित्र मोहनीय का क्षपण व उपशमन के देखे जाने से वहाँ क्षायिक व औपशमिक लब्धियों की उपलब्धि संभव है। ये समझ में आई बात? एक लोभ को छोड़ो तो बाकी सबका है, इसलिए वहाँ पर भी औपशमिक और क्षायिक भाव घटित हो सकता है, एक बात। अथवा दूसरी बात, क्षपक और उपशामक संबंधी अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर, अब अपूर्वकरण में तो कुछ क्षपणा उपशमना तो हुई नहीं है, तो वहां पर भी पहले ही समय से लेकर ऊपर सर्वत्र क्षायिक और औपशमिक संयम लब्धिया है ही। यानी वो अपूर्वकरण उपशम श्रेणी वाले अपूर्वकरण को भी औपशमिक संयम लब्धि कहेंगे, वहां पर भी वो है, क्योंकि उक्त गुणस्थान के प्रारंभ होने के प्रथम समय से लेकर थोड़े थोड़े क्षपण और उपशमन रूप कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? कहाँ वहाँ क्षपणा हुई, कहाँ वहाँ उपशमना है, पर जो क्षपणा रोग कार्य वहाँ से ही शुरू हुआ है, एक जाके आगे एकदम नहीं वो संपन्न होता है। यदि प्रत्येक समय कार्य की निष्पत्ति न हो तो अंतिम समय में भी कार्य पूरा होता हुआ नहीं पाया जाता। प्रत्येक समय में कुछ न कुछ उस कार्य संबंधी वहाँ पूर्व पर्याय रूप से कुछ बात हो रही है, तब जाके वो कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई देता है उस विशिष्ट समय पर। जैसे हमने औषमिक समय तो प्राप्त हुआ तो उसके अंतर्मूर्त पहले वो पांच लब्धि रूप से पूर्व पर्याय बताई जाती है। हमने कहा ये हमारा कार्य संपन्न हुआ, शादी हो, ब्याह हो या हमारा शिविर हो, तो उसकी तैयारी कितने महीने पहले से चलती है ना, तो वो प्रत्येक कार्य का उसमें कुछ योगदान होकर वो कार्य संपन्न होता है वहां पर जाकर। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक समय कार्य की निष्पत्ति न हो तो, यानी कार्य तो हर एक एक समय का है, तो वो उस संबंधी कुछ न कुछ वहाँ कार्य बन रहा है, तो अंतिम समय में भी कार्य पूरा होता हुआ नहीं पाया जा सकता। अब शंकाकार पूछते हैं, एक ही चारित्र के औषमादि तीन भाव कैसे होते हैं, यानी संयम जो है तो उसके तीन भाव कैसे हो सकते हैं। समाधान, जिस प्रकार एक चित्र पतंग अर्थात बहुवर्ण पक्षी के बहुत से वर्ण देखे जाते हैं, यानी एक ही पक्षी है उसमें बहुत सारे वर्ण देखे जाते हैं, जैसे अनेक रंगी वाला, ये समझे ना, सप्तरंगी होता है। हम तोता भी देखते तो हरा भी है, उसकी चोंच लाल भी है, ये हम ऐसा भी देखते हैं ना, वो तो एट ए टाइम उसके वो पंखियों में, जब मयूर है उसके में कितने कितने वो तो अलग अलग कलर है वहां पर। उसी प्रकार एक ही चारित्र नाना भावों से युक्त हो सकता है। अब ये सामयिक छेदोपस्थापना और संयम, सामान्य से संयम की बात हो गई। अब 94 पृष्ठ पर आते हैं। परिहार शुद्धि संजदो संजदा संजदो नाम कदम भवदी। जीव परिहार शुद्धि संयत और संयता संयत किस कारण से होता है, यहाँ भी नए और निक्षेपों का आश्रय लेकर पूर्ववत चालना करनी चाहिए। इन सब नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि निक्षेप यहाँ भी लगाने चाहिए। उसका उत्तर बताते हैं, खवो व समियाए लंधिये। शौशमिक लब्धि से जीव परिहार शुद्धि संयत व संयता संयत होता है, क्योंकि परिहार विशुद्धि केवल छठे सातवें में है और वहाँ शौशमिक संयम ही है, ही लगाना। संयमा संयम में भी वो शौशमिक भाव ही होता है। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के अनंत गुणी हानि द्वारा क्षय को प्राप्त होकर देशघाती रूप से उपशांत हुए स्पर्धकों के उदय से परिहार शुद्धि संयम की उत्पत्ति होती है। इसीलिए शौशमिक लब्धि से परिहार शुद्धि संयम होता है, यानी देशघाती रूप से उदय होता है। यहाँ ये बात हो रही है तो ये सत्ता में भी वो सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणाहीन होकर उपशांत हुए हैं और उसका उदय देशघाती रूप से चल रहा है। चार संज्वलन और नौ नौकशायन के क्षोभम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है, इसलिए क्षोभम लब्धि से संयमा संयम होता है। अब देखो यहाँ प्रत्येक अनावरण का नाम नहीं लिया, यहाँ पर भी चार संज्वलन और नौ नौकशाय लिए, इसलिए शंकाकार पूछ रहे हैं, चार संज्वलन और नौ नौकशाय इन 13 प्रकृतियों के देशघाती स्पर्धकों का उदय तो संयम की प्राप्ति में निमित्त होता है, वह संयमा संयम का निमित्त पने को कैसे प्राप्त कर सकता है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन चार संज्ञान आदि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया है, उस उदय में सेमा सेम को छोड़ संयम उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। पहले भी बात एक आई थी, हमने श्रेणी में पढ़ी थी कि पांचवें गुण स्थान में ही मोहनीय का देशघातीकरण हो जाता है। यानी यहाँ देखो, इससे ये बात फिर से पढ़ो, इसमें क्या बात सही घटित हो रही है। छठे सातवें में भी और पांचवें में भी संज्वलन के देशघाती का उदय बता रहे। पांचवें में संज्वलन का सर्वघाती नहीं कहा, पांचवे के लिए भी क्योंकि उसमें वो ऊपर का वाक्य फिर पढ़ती हूँ, 51 सूत्र के नीचे का, चार संज्वलन और नौ नौकाशायों के सर्वघाती स्पर्धकों के अनंत गुणी हानि द्वारा क्षय को प्राप्त होकर देशघाती रूप से उपशांत हुए स्पर्धक है ना, जो उदय में नहीं आ रहे सत्ता में पड़े हैं, उसका उदय से और उसका उदय होता है, जो सत्ता में उसी का उदय होगा। यही बात उन्होंने आगे के लाइन में लिखी कि चार संज्वलन और नौ कषायों के क्षोभशम संज्ञा वाले देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयमा संयम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ प्रश्न यही है, पांचवें गुणस्थान वाले को भी इन्होंने संज्वलन और नौ नौ कषायों का देशघाती का उदय बताया, ये ख्याल में आई बात? तो वहां संयम क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न था, उसके लिए अब जवाब दे रहे हैं। ये बहुत महत्व के दो पैराग्राफ है, देखो ये शंका का समाधान देखो। नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जिन चार संज्वलन आदि के देशघाती स्पर्धकों का उदय प्रतिहत हो गया है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याख्यान यानी त्याग, और प्रत्याख्यान का आवरण यानी वो नहीं होने देता है। प्रत्याख्यान आवरण वो सर्वघाती है, किसका पूरा घात करती है? संयम का घात करती है। तो वहां पर चूंकि संज्वलन के देशघाती का उदय है, फिर भी प्रत्याख्यान आवरण सर्वघाती है, उसके उदय में संयम नहीं हो रहा है। संज्वलन तो देशघाती रूप से उदय में आ रहा है, परंतु प्रत्याख्यानवरण वहाँ उपलब्ध होने से, उदय रूप होने से संयम नहीं होने दे रहा। फिर से पढ़ो ये पूरा समाधान देखो। प्रतिहत यानी नाश हो जाता है, उदय प्रतिहत हो गया यानी उसका उदय कुछ बेकार का गया ना, उसका देशघाती रूप से उदय हुआ तो क्या हुआ? यहाँ प्रत्याख्यानवरण पड़ा है, वो नहीं होने दे रहा, उसमें बोलो
संज्वलन का उदय प्रत्याख्यान रूप होकर आता है।
ना ना ना, ऐसा कभी नहीं देखा, नेवर। नहीं तो पहले गुणस्थान में भी आप अनंतानुबंधी रूप से उदय कहना पड़ेगा, पांचवे में क्यों उसके रूप उदय में आता है कहेंगे? अगर पांचवे में वो प्रत्याख्यान होकर आता है, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हमने कहा प्रत्याख्यान जैसा काम करता है।
हाँ,
वो बात अलग है। पहले गुणस्थान वाले चारों जो है अप्रत्याख्यान अन्य भी, अनंतानुबंधी का तो उदय है ही है, पर पहले गुणस्थान वाले अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन अनंतानुबंधी जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा हमने कहा था। उसके जैसे काम करने का उसका अर्थ क्या, सम्यक तो नहीं होने दे रहे, उसमें इतनी क्या बात है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? फिर से ये समाधान पढ़ते हैं।
हाँ,
कैसे होगा? होता ही नहीं है, सर्वघाती ही है वो। देशघाती पढ़ना पांचवें गुणस्थान से शुरू हो जाता है, चौथे में भी नहीं होता देशघाती, पांचवे के लिए खास बता रहे हैं। देखो, समाधान फिर पढ़ते हैं। शंका और समाधान दोनों ही बहुत महत्व के हैं। इन्हें पांचवे गुण स्थान में संज्वलन 4 और नौकषाय 9 का देशघाती का उदय है। और नौकश है, परंतु प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती होने से उसके सर्वघाती का उदय होने से, क्योंकि वो है ही सर्वघाती प्रकृति, उसमें कोई देशघाती नहीं होते, ये संज्वलन आदि के देशघाती का उदय प्रतिहत हो गया। वो नष्ट हो गया, वो कुछ काम नहीं करता, यानी उसका घात हो गया, ऐसा कहेंगे। क्योंकि हमने वो श्रेणी में एक वाक्य पढ़ा था कि वहां जब देशघातीकरण होता है देशघातीकरण नाम का एक करण होता है, तो वहां क्या हो जाता है कि चक्षु दर्शनावरण चक्षु यानी दान लाभ वगैरह वो सब एक एक को लिया क्रम से, अवधि ज्ञानावरण आदि सब प्रकृतियां देशघाती रूप हो जाती है सत्ता में। तो वहां प्रश्न पूछा था वहां मोहनीय को क्यों नहीं लिया, तो वहां बताया गया था कि पांचों गुण स्थान ही मोहनीय का देशघातीपना हो जाता है। ये यहां से नक्की हो गया कि संज्वलन भी देशघाती रूप से उदय में आ रहा है। पेज नंबर 94 हाँ ये तीनों जो 12 कषाय जो है कर्म वो सर्वघाती ही है, अपने प्रतिपक्ष का पूरा ही, उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है, सवाल ही नहीं उसका। परंतु यहाँ का संज्वलन यहाँ पर देशघाती, वो देशघाती प्रकृति में दो प्रकृतियां होती है, सर्वघाती देशघाती, जो देश सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो कभी देशघाती नहीं होगी। केवल ज्ञानावरण देशघाती होकर थोड़ा माइल्ड हो गए उदय में, ऐसा कभी नहीं होगा, ख्याल में है ना। वो प्रकृति सर्वघाती है, उसमें कभी देशघाती प्रकृति ये नहीं होगे, ये बात ख्याल में आती है। ये नौकषाय और सर्व संज्वलन है वो देशघाती प्रकृतियां हैं, उसमें सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन से किसका संज्वलन का उदय तो पहले में भी सत्ता में नहीं उदय में, अरे पहले गुणस्थान वाले को भी उदय है ना, चारों कषायों का उदय है, तो पांचवें गुणस्थान वाले को भी दो कषाय चाकुड़ी का उदय है ना, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, तो संज्वलन है तो किस रूप से उदय में आ रहा है, तो देशघाती रूप। कहां पर पांचवें में अप्रत्याख्यानावरण का नहीं होता, प्रत्याख्यानावरण का होता है, तो दोनों का है, पहले गुणस्थान वाले का 4 का उदय है, 4 कषाय चौकड़ी का उदय पहले दूसरे के लिए, तीसरे के बाद वो अनंतानुबंधी रुक गया, 3 कषाय चौकड़ी का उदय है तीसरे चौथे को, पांचवे वाले को 2 कषाय चौकड़ी का उदय है, यानी प्रत्याख्यानावरण संज्वलन दोनों का उदय है। तो वहां प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती ही है, पर संज्वलन वहां देशघाती रूप होकर स्थित है सत्ता में और उसी का उदय चल रहा है, फिर भी प्रत्याख्यानावरण पड़ा है उसका, तो उसका कार्य होगा वहां पर, जो संज्वलन के देशघाती को तो वो तो नष्ट कर देगा, वो संयम नहीं होने देगा, ये कहना चाहते हैं। ये यहां बहुत स्पष्ट रूप से आई बात। उस उदय में संयमासंयम को छोड़ संयम उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती, यानी वहां संज्वलन देशघाती होकर भी वो संयम नहीं उत्पन्न कर सकता, क्योंकि वहां प्रत्याख्यानावरण का उदय पड़ा है, ख्याल में है ना बात। अब आगे बढ़ते, सुहम सांप्राय शुद्धि संजदो, जाखाद विहार सुज्जिसंजदो नाम कदम भवदी। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीव किस कारण से होता है, यह दोनों श्रेणी में होते हैं तो हम दोनों श्रेणियों के नाम तो औक्षमिक और क्षायिक कहेंगे। यहाँ पर यह सूत्र सुगम 95 पृष्ठ पर आते हैं। व समियाए खैयाए लब्धिये, औक्षमिक और क्षायिक लब्धि से जीव सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत होता है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत तो दोनों श्रेणियों के 10वें गुणस्थान में, यथाख्यात को 11वें में भी है, 12वें में भी है और 13वें 14वें में भी है। यतः उपशामक और क्षपक दोनों प्रकार के सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थानों में सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम की प्राप्ति होती है। देखो गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म सांप्रायिक और उस संयम का नाम भी सूक्ष्म सांप्रायिक संयम है। इसीलिए औक्षमिक और क्षायिक लब्धि से सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयम होता है। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय आदि गुणस्थानों में, आदि में 13वां 14वां भी लेना, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम की प्राप्ति होने से औक्षमिक व क्षायिक लब्धि से यथाख्यात विहार शुद्धि संयम होता है। अब ये संयमों के सारे भेद बताए, संयमा संयम को भी ले लिया उन्होंने। असंजदो नाम कदम भवदी,
कुछ कहा कि
जीव असंयत किस कारण से होता है, यह असंयत के गुणस्थान मालूम है कौन से? 1 से 4।
कोई बोल रही है क्या?
शोभा कुछ बोल रही है क्या? असंयम कहते असंयत, असंयत यानी पहले से चौथे तक, वो असंयत समय दृष्टि की बात नहीं है। संयम मार्गणा की अपेक्षा असंय, जैसे संयत कहाँ से कहाँ तक होते हैं तो 6ठे से 14वें तक सारे संयत होते हैं। पांचवे जीव को कहेंगे संयता संयत, उसका संयम कौन सा है तो कहेंगे संयमा संयम। जैसे जिनमें असंयम पाया जाता है, किसमें? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों ही गुणस्थान वर्ती उनको एक नाम है असंयत। वो असंयत समय दृष्टि कहेंगे तो चौथा गुणस्थान, आगे समय दृष्टि नाम लिया है ना, पर असंयत मिथ्या दृष्टि भी है, असंयत सासाधन भी है, असंयत मिश्र भी है, असंयत समय दृष्टि भी है, चारों ही असंयत है उसके बाद। तो जीव असंयत किस कारण से होता है, यह सूत्र सुगम है। संयम घादीनम कम्माणम उदयेन, उदयेन है ना, तो इधर उदय कहेंगे। तो कहते संयम के घाती कर्मों के उदय से जीव असंयत होता है। शंका, एक अप्रत्याख्यानावरण का उदय ही असंयम का हेतु है, क्योंकि वह संयमा संयम के प्रतिषेध द्वारा समस्त संयम का घाती है। अतः संयम घाती कर्मों के उदय से असंयत होता, ऐसा कहना कैसे घटित होता है? वो कहते अकेले अप्रत्याख्यानावरण के उदय को ही बताओ, क्योंकि उसका उदय चौथे तक है, इसलिए वही संयम का घात करता है, ऐसा बताओ, इसलिए वो असंयम ही, ऐसा बता दो। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अन्य भी चारित्रावरण, चारित्रवरण नहीं, चारित्रावरण कर्मों के उदय के बिना अकेले अप्रत्याख्यानावरण में देश संयम को घात करने की सामर्थ्य नहीं होती। यानी वो संयमा संयम का घात करता है, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण को असंयम कह दो, ये कहना चाहते हैं। उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं 96 पेज पर। शंका, संयम जीव का स्वभाव है, इसलिए वह अन्य के द्वारा विनष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका विनाश होने पर जीव द्रव्य के विनाश का भी प्रसंग प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं ना ज्ञान जीव का स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं होता, इस तरह से वो पूछ रहा है संयम भी जीव का स्वभाव है। समाधान तो नहीं आएगा ना, ऐसा प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार उपयोग जीव का लक्षण माना गया है उस प्रकार संयम जीव का लक्षण नहीं होता, क्योंकि सभी जीवों में पाया जाना चाहिए तभी तो उसको लक्षण कहेंगे। कुछ जीवों में है कुछ नहीं है तो उसको हम लक्षण कैसे कहेंगे? समझ में आई ना बात? जैसे निगोद में भी ज्ञान है कि नहीं उपयोग रूप, हाँ तो उसको लक्षण कह सकते हैं। जो सभी जीवों में संसारी हो, मुक्त हो, निगोद हो, जो कुछ है उसको हम लक्षण कह सकते हैं। तो इसलिए शंकाकार पूछता है लक्षण किसे कहते हैं, उसका समाधान। जिसके अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है वही उस द्रव्य का लक्षण है। जैसे पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप और रस गंध और स्पर्श है, जीव का लक्षण उपयोग है। ये लक्षण का लक्षण बता रहे कि जिसके अभाव में द्रव्य का अभाव हो जाएगा। अभी वो सारे दूषणों से रहित हो तो सब ले लेना है। अतएव संयम के अभाव में जीव द्रव्य का अभाव नहीं होता, यानी असंयम है फिर भी वो तो जीव द्रव्य है ना, उसका संयम का अभाव है इसलिए वो जीव नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वो जीव का लक्षण नहीं है, वो जीव का स्वभाव नहीं कहेंगे उसको। यहाँ तक तो ज्ञान मार्गना हो गई, अब दर्शन मार्गना की बात करते हैं। दंशनानुवादेन चक्षु दंशनी और चक्षु दंशनी ओहि दंशनी नाम कदम भवदी। अब ये जो तीन दर्शन जो है उसके पर्याय है वो कैसे है, कौन से भाव है वो मालूम है कि नहीं? औपशमिक है कि क्षायिक है कि औदयिक है, कौन से है? क्षौक्षमिक है। जैसे क्षौक्षमिक ज्ञान है वैसे एक क्षौक्षमिक दर्शन है चक्षु औदी, और केवल दर्शन वो क्षायिक है। तो दर्शन मार्गानुसार जीव चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी व अविदर्शनी किस कारण से होता है, यहाँ पर पहले के समान निक्षेप करना चाहिए। वो सारी चर्चा है ना, जो नाम स्थापना वगैरह लगा लेना उस पर चालना करो। शंका, दर्शन नहीं है क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। अब ये दर्शन कोई वो है ही नहीं करके वो शंका उठा रहे हैं, क्योंकि उसका विषय तो कोई है ही नहीं। बाह्य पदार्थों संबंधी सामान्य को ग्रहण करना दर्शन नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर केवल दर्शन के अभाव का प्रसंग आता है। इसका कारण यह है, जब केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यों को जान लेने पर, केवल दर्शन के लिए कोई विषय ही नहीं रहता। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी शंका है और उसको डिटेल में पढ़ना अच्छा है, कल पढ़ेंगे इसको, क्योंकि पहले पहले दर्शन को ही वो तो असिद्ध करना चाहता है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो रे।